उपादान को संभालने में, नहीं तो अपने उपादान को बेनिमित्त पतित करने में भी कारण बन जाएंगे। एक बार एक राजा साहब जब सैन करते थे तो एक व्यक्ति लगा था उनकी सेज तैयार करने के लिए, फूलों से सेज तैयार होती थी उनके सोने के लिए। अब बताओ, एक व्यक्ति उसके लिए सुबह से लगा हुआ है शाम तक जमाने के लिए कि बढ़िया सेज जमेगी उनकी, उनका बिस्तर अच्छा होना चाहिए फूलों से बना हुआ। अब एक दिन दोपहर में उसको ऐसा लगा कि देखो कितना मुलायम है, फूलों से बना है, कितना सुगंधित है, अपन थोड़ी देर में कौन राजा साहब आ रहे हैं, अभी तो रात को आए हैं, अपन थोड़ा इस पर विश्राम करके देख ले हैं, सबको मालूम। सो थोड़ी देर के लिए उसने उस पर लेट के देखा और उतने में लग गई उसकी आंख। आंख लग गई तो नींद आने से देर हो गई, राजा साहब ने आकर के देख लिया और उसे जगाया। वो तो घबरा गया, उठ करके खड़ा हुआ कि मेरी गलती हो गई, बहुत माफी मांगी। राजा ने कुछ नहीं कहा, राजा ने व्यक्ति को बुला करके अपने सामने ही सामने कहा कि लगाओ इसको हंटर, ये मेरी सेज पर इसने सब खराब कर दी और उस पर सोया था, शर्म आनी चाहिए इसको। सो उसको हंटर लगाने के लिए व्यक्ति ने जैसे ही उसको एक हंटर मारा चाबुक, उसको बहुत हंसी आई। दूसरे हंटर में उसकी हंसी और बढ़ गई। राजा साहब बहुत दंग रह गए कि बताओ इतनी पिटाई करने के बाद भी मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। ठहरो, पूछा उससे कि भाई तुम हंस क्यों रहे हो, तुम्हें तो चोट पहुंचाई जा रही है, पीड़ा पहुंचाई जा रही, फिर भी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हो। बोले महाराज हम तो इसलिए हंस रहे हैं कि 5 मिनट और घंटा भर हम वो फूलों की सेज पे सोए थे, सो इतनी पीड़ा भोगने पड़ रही, और जो कोई वो पे जिंदगी भर सो है वो की क्या स्थिति बन, ये से हंस रहे थे हम। उदाहरण है, अपन भी ऐसे ही 5 इंद्रिय और मन के विषयों में जितना राग भाव है उससे क्या होगा, मेरा ही अकल्याण होगा। लगता तो अच्छा है क्षण भर के लिए, लेकिन फिर उससे जो पाप का बंध होगा वह मुझे ही भोगना पड़ेगा, मेरे बांधे हुए कर्म और कोई कैसे भोग सकता है, मुझे ही भोगना पड़ेगा। ऐसा विचार करके अपन अपने राग भाव को कम करने के लिए वस्तुओं को जितना आवश्यक है उतना ही भोग की वस्तुएं रखें और अधिक उनकी संख्या ना बढ़ाएं। आचार्य भगवंतों ने 5 प्रकार के अभक्ष्य में, वो तो खाने पीने की चीजें हैं, लेकिन जरा विचार करें कि उसके उपलक्षण से जितनी भी हिंसा की चीजें हैं सबका निषेध कर दिया। आज अपन वर्तमान में पहनने ओढ़ने में भी कितनी हिंसक चीजों का उपयोग कर रहे हैं, जरा विचार करें। खाने पीने में तो कर ही रहे, पहनने ओढ़ने में भी कर रहे। रेशम की साड़ी पहनेंगे भले ही उसमें कितने भी जीवों का, 4 इंद्री जीवों का घात होए, अच्छी लगती है। कॉस्मेटिक एक से एक लगाएंगे, नेल पेंट्स लगाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, बहुत अच्छा भैया होना चाहिए, सौंदर्य के लिए तो उपाय करना चाहिए, लेकिन ऐसे उपाय जिनमें कि जीवों का घात हो हमें बचना चाहिए। ये दोनों ही चीजें, चाहे लिपस्टिक हो चाहे नेल पेंट हो, दोनों कॉस्मेटिक जो बनाए जा रहे हैं वो बिना हिंसा के नहीं बनते। अधिकांश जो अपन दवाइयों का सेवन करते हैं उन दवाइयों का प्रयोग पशुओं पर किया जाता है जिससे कि उन पशुओं का मरण हो जाता है, तो वो क्या दवाइयां शुद्ध रहीं या हिंसक हो गईं? वो तो हिंसक ही हो गई। आपको मालूम हो कभी कैसेट में देखिएगा कि लिपस्टिक और नेल पेंट्स कैसे बनता है, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, घंटे भर का त्याग जितनी देर मंदिर जे हैं उतनी देर न लगे हैं, अरे तो कर लो भाई, इतना भोग का परिमाण नहीं कर सकते। कैसे बनती है नेल पेंट्स? मछलियों को कमती पानी में रखा जाता है जिससे वे तड़पती हैं और जिससे उनके ऊपर की चमकदार लेयर टूट जाती है और फिर उनको भरे हुए जल में फेंक दिया जाता है। उनको तो सिर्फ इससे मतलब है कि मुझे उनके ऊपर की चमकदार लेयर मिल गई। वो जो चमड़ी ऊपर की मिल जाती है उस चमड़ी से केमिकल्स बना करके शाइनिंग के लिए नेल पेंट्स में मिलाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। और नेल पेंट्स का अपन उपयोग करते हैं, अरे भोजन करते समय तो ना लगा के रखूंगा, नहीं तो भोजन सामग्री के साथ मिल रही है वो अवक्ष चीज, मुंह में लगाए हैं और उसमें 20 में से 12 वस्तुएं ऐसी हैं जो मांसाहार से बनती, मांस से बनती। आप आश्चर्य करेंगे लेकिन इन सब के बारे में वैज्ञानिक कह रहे हैं। अपन अपने शौक के लिए मना नहीं करते, लेकिन ऐसा शौक करो, ऐसा सौंदर्य प्रसादन का उपयोग करो जिसमें कि और जीवों की हिंसा ना हो, दूसरे जीवों के प्राण लेकर के अपन क्या सुंदर हो पाएंगे। किसी कवि ने कल्पना की है, महावीर भगवान की माता श्रृंगार कर रही थी और फूलों के द्वारा उन्होंने अपने जूड़ा बांध करके उसको सजाने के लिए उसमें फूल लगाया, उसी समय भगवान अपनी बालक अवस्था में और मां के पास आए और दूर से ही दरवाजे पर खड़े हो गए, देखने लगे। मां ने पास में बुलाया कि क्यों वर्धमान, मैं सुंदर लग रही हूं, मेरे जूड़ा जो है सुंदर लग रहा है फूल के कारण, मेरे जूड़े पर फूल बहुत सुंदर लगेगा, है ना। तो भगवान ने क्या कहा था कि मां फूल जूड़े पर शोभा नहीं देता, फूल तो डाली पर ही शोभा देता। यह जो तुमने अपने सौंदर्य के लिए अपने बालों में फूल लगा रखा है वो तो मरा हुआ है, जीवित तो वो डाली पर ही रहता है। और मां मुझे तो आवाज आ रही है उस फूल के रोने की जो अपनी डाली से बिछुड़ गया है, अपनी मां से बिछुड़ करके जैसे बेटा दुखी होता है ऐसे ही वो भी दुखी है। इतना संवेदनशील जिसका मन है वो ही व्रतों को पाल पाएगा भैया, वो ही अपने राग द्वेष को कम करने के लिए बाह्य में आचरण अंगीकार स्वयं करेगा, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी से। नहीं तो किसी को कहो तो वो कहते कि अरे महाराज जी तो ऐसे ही कह रहे हैं, हमारे नेल पेंट्स और लिपस्टिक छुड़वाए दे रहे। नहीं भैया, हम काय को छुड़वाएंगे आपसे, आप तो लगाओ, पैसा आपके हैं वो ले आओ। और जीवों को मार इतना ही बता रहे कि जीव बहुत उसमें हिंसा होती है, आप लगाते जरूर हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारे बेटियां हमारी बहनें वही तो उपयोग कर रही हैं, लेकिन उन्हें इतना विचार तो करना चाहिए कि नहीं भाई ये चीजें तो मेरे लिए हिंसक हैं तो क्यों उनका उपयोग करूं, मैं तो अहिंसा के प्रति और करुणा भाव दया भाव के प्रति समर्पित हूं। ऐसे ही एक प्रयोग किया गया, खाने पीने की वस्तुएं अपन गोभी खाते हैं, कोई चीजें बता रहा हूं मुख्य जिनके की प्रयोग हो चुके। जमीकंद का भी प्रयोग किया जा सका, अत्यंत हिंसक है। ऐसे ही गोभी का उदाहरण देता हूं, फूल गोभी खाते हैं लोग, लेकिन फूल गोभी में उसी रंग का चार इंद्री जीव अत्यंत सघन मात्रा में पाया जाता। आप फूल गोभी को ऐसे झटकारें उसमें से नीचे जीव निकल जाएंगे, वो फिर भी नहीं निकले तो आप क्या उपाय करें। प्रयोग किया, वैसे करने की आवश्यकता नहीं है, किया हुआ उपयोग है, प्रयोग है। सिंदूर आता बाजार में, सो सिंदूर को पानी में घोल करके कपड़े पर लगा लिया और उस सिंदूर के से भीगे कपड़े में फूल गोभी को लपेट करके आध घंटे धूप में रख दिया। फिर जैसे ही कपड़ा हटाओगे जितने भी कीड़े हैं वो सब उस कपड़े के ऊपर चलते हुए जैसे जुआ चलते हैं ऐसे ही दिखने लगे कि कहां से आए। भैया उसके भीतर थे, वो मरकरी ऑक्साइड है, वो पॉइजनस होने की वजह से उन्होंने स्थान छोड़ करके बाहर निकल आए और उन सब जीवों को अपन घात करते हैं अपने थोड़े से जिह्वा लालच के पीछे, अपने भोगो भोग के लिए। भैया और भी वस्तुएं हैं, अपन उनसे भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ऐसा विचार करके अपन को जो इसमें जीवों की हिंसा होती है उन चीजों से बचना चाहिए। लेकिन क्या करें, लोलुपता जिह्वा की है बहुत अधिक। वो जिसने जीत ली सो सबरे व्रत आ गए। विनोबा के उसमें आश्रम में तो अस्वाद व्रत नाम का एक व्रत पहले लेना पड़ता था, और व्रत लियो बाद में। पहले अस्वाद, पहले अपने स्वाद को अपनी जिब्बा को जीतो। घर में भी जब ज्यादा चगर मगर करी के जाए ऐसी चीज है बाहूसी चीज है तो मां क्या कहती थी, चुपचाप खा लो, जीभ में चोटियां ले लो वो खा लो। जीभ में चोटियां लेने का मतलब क्या, अपनी जिब्बा इंद्री को जीत लो। 20 मिनट का काम है, उतरी घाटी और हुई माटी, कितनी बढ़िया हो रसगुल्ला, लेकिन जहां मुंह में से यहां से गले में से उतरा फिर बाद में निकाल के खाओ, किसकी हिम्मत पड़ेगी। वो तो मिट्टी हो गया, अब वो स्पर्श करने योग्य तक अपने स्वयं की इच्छा नहीं होती उसकी। ऐसे तो पंचेंद्री के विषय हैं, लेकिन उनके प्रति अपनी लोलुपता क्षण भर की और अपन को कहां अपनी आत्मा को पतन की तरफ ले जाती है। ऐसा विचार करके मेरे कहने से छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं अपने जीवन में विचार करें कि हां वास्तव में ऐसा ही है। विरक्ति अपने जीवन में आए और धीरे धीरे करके भोग उपभोग की जो सामग्री अत्यंत आवश्यक है, जो कि अहिंसक है, उसका ही हम उपयोग करें तो अपने आप भोग उपभोग का परिमाण नाम का व्रत सदगृहस्थ के जीवन में आराम से आ सकता है। प्रधानमंत्री थे लंदन के चर्चिल, हैं प्रसिद्ध है। क्या हुआ, बहुत अच्छा भाषण करते थे, उनका एक बार भाषण होना था। वो अपनी गाड़ी से भाषण के 20 मिनट पहले घर से निकले, लेकिन थोड़ी दूर गए थे और गाड़ी खराब हो गई। अब कैसे पहुंचे, खुद को तो भाषण करना है, देर से भी नहीं पहुंच सकते, समय से पहुंचना पड़ेगा। सोचा कि भाई टैक्सी कर लो, टैक्सी में बैठ करके टैक्सी वाला भेज देगा। तो टैक्सी वाले से कहा कि भाई चर्चिल का ये नहीं बताया कि मैं ही चर्चिल हूं। कह ले भाई चर्चिल का लेक्चर होना है, मुझे वहां तक भेज दो। तो उसने कहा कि जनाब अभी जब तक चर्चिल का लेक्चर पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं व्यापार इत्यादि नहीं करूंगा, मैं तो उनका लेक्चर सुनने के लिए यहां पर रेडियो के पास तैयार खड़ा हूं। बहुत मनाया उसको कि नहीं भाई चलो। उसने कहा कि नहीं, इतना बढ़िया जब उनका लेक्चर और भाषण आएगा उसको छोड़ करके तो मैं टैक्सी नहीं चलाऊंगा। इतना त्याग देख करके चर्चिल को बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो मेरे भाषण का कितना क्रेज है लोगों के भीतर, अपना धंधा भी छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन अब जाना तो था, कैसे मनाएं। उनके दिमाग में एक चीज आई, धीरे से एक टैक्सी वाले से कहा कि $1 देऊंगा मैं, 45-50 रुपए का होता डाला, इतने रुपए देऊंगा ले चलो। रुपया दो रुपया मिलते टैक्सी की उसको मिल रहे सीधे $1। थोड़ी देर तो उसने विचार किया, कहता बैठो चलो, बिठा लिया और चलने लगा। सो पूछा कि क्यों भाई तुम्हें नहीं सुनना चर्चिल का भाषण। अरे कह ले भाड़ में जाए, $1 मिल रहा हो वो ज्यादा कीमती लियो। ऐसा ही तो अपने जीवन में है, पांच इंद्री के विषयों की पूर्ति हो रही हो तो अपन धर्म भी छोड़ देते। नहीं भाई, मैं तो धर्म धारण करूंगा, चाहे पांच इंद्री के विषय और मन के विषय छूट जावे, मैं पांच इंद्री और मन के विषय की पूर्ति के लिए अपना कर्तव्य अपना धर्म ध्यान नहीं छोड़ूंगा। इस तरह का भाव अपने भीतर में आवे तो अपन आराम से इन व्रतों को अंगीकार करके और अपने आत्मा की निर्मलता को प्राप्त कर सकते भैया। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता,
नहीं करूंगा ऐसा विकल्प, नहीं करूंगा जिससे कि सूक्ष्म हिंसा भी हो, सो ऐसे सूक्ष्म पाप और स्थूल पापों का त्याग कर देने से सीमा से बाहर वह पाप से मुक्त होकर के महाव्रति मुनि महाराज जी के समान अपना आचरण करता है, ऐसा आचारी भगवंतों ने पीठ थपथपाई श्रावक की कि देखो इतना तो कर लिया तुमने, और कहते कि सीमा के भीतर भी जो प्रयोजन भूत है उतना ही कार्य करो, ज्यादा निष्प्रयोजन कार्य मत करो, जिससे कोई प्रयोजन कोई लाभ नहीं होने वाला बाकी और जीवों का अहित होने वाला है, ऐसा अहितकारी काम क्यों करें। पांच प्रकार के अनर्थ दंड की चर्चा की, मन वचन काय की क्रियाएं ऐसे कार्यों से बचकर के रहें जिससे कि दूसरे का अहित हो। सबसे पहले पापोपदेश लिखा, थोड़ा सा अपन विस्तार से इस चीज को समझ लें। आचार्य भगवंतों ने गाथा में उपदेश दिया है कि त्रियंचों के लिए और मनुष्यों को भी पहले चलता था, दासी दास प्रथा थी तो मनुष्य की भी पशुओं के समान खरीद फरोख्त होती थी चौराहे पर, जैसे कि अपन ठहरा के मजदूर को अपने काम को ले जाए एक दिना को, वही है, थोड़ी प्रक्रिया बदल गई है। चौराहे पर खड़े हुए हैं मजदूर, चलो हमारे ते काम करने हैं, मकान बन रहा है, कितने रुपया ले हो, ले आपने एक दिन के लिए उसको खरीद लिया समझ लो। पहले लोग वर्षों वर्षों के लिए अपना दास बना लेते थे, इस तरह उनकी खरीद फरोख्त करना, उनका व्यापार करना जिससे कि उनको संक्लेश हो। पशुओं के लिए तो मारण तारण इत्यादि के लिए भी भेज देते हैं, कसाई को दे देते हैं, हमारे काम का नहीं रहा पशु, अब वो दूध इत्यादि नहीं देता है, बैल है सो खेत में काम नहीं कर पाता है, कहां तक उसको खिलाएं, दे दो, यहां पर कमती में बिकेगा वहां जाके दे दो जिससे ज्यादा में बिक जाएगा। खुद नहीं कर रहे, खुद ने तो त्याग कर दिया, लेकिन दूसरे को उपदेश दे रहे, तुम वो चौराहे पे से मजदूर ले उतने सस्ते मिले, तुम वो जगह से पशु खरीदो उतने से सस्ते मिले, और वो जगह बेचो उतने महंगे बिकत का, ऐसे स्लॉटर हाउस पास में है सोते हजार हजार रुपया की गैया ले ली सो की जगह पे, ऐसा उपदेश। ये सब पाप का उपदेश है, विचार करें अपन। तो आचार्य भगवंत तो यहां तक कह रहे कि दूसरे के लिए घर गृहस्थी के काम में लगाना और उसे घर गृहस्थी के काम बताना, ऐसो करो ऐसो ने करो, अरे ये कहना कि इसमें ज्यादा हिंसा होगी ये मत करो, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा उपदेश दे दिया जिससे कि वो और अधिक पाप कार्यों में लग गया, आरंभ सारंभ के कार्यों में लग गया। ये सब उपदेश पाप का ही है, व्रति व्यक्ति इससे बचेगा। निष्प्रयोजन है अपना कोई प्रयोजन, उसमें सद नहीं रहा है, लेकिन अपन चार लोग बैठते हैं तो इसी तरह के चर्चा में दूसरे को पाप का उपदेश दे देते हैं। ध्यान ही नहीं रह पाता, अज्ञानता पूर्वक असावधानी वश ऐसा कर लेते हैं। अपना तो कुछ लाभ नहीं होने वाला, लेकिन उसके माध्यम से सामने वाले को भी पाप का बंध होगा, उसका अहित होगा, भले ही उसका पाप का त्याग नहीं है। बहुत सारी चीजें जो कि हिंसक हैं, इसमें तो आचार्य भगवंतों ने फरसा तलवार, अग्नि शस्त्र, विष शाकल इत्यादि सबका उल्लेख किया है। लेकिन आज के समय में भी अपन हिंसा की चीजें दे करके अपना बड़प्पन मानते हैं, यश और ख्याति लूटना चाहते हैं, ऐसी चीजों का दान देते हैं जो कि सामने वाले का अहित करने वाली हैं। बताओ, संसार बढ़ाने वाली चीजों का अपन दान कहते हैं कि हमने दान दिया और उससे अपन यश ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं? भाई ये तो निष्प्रयोजन है। अब इस पे खूब विचार कर लेना, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो संसार बढ़ाने वाली, अपन दूसरे को घात करने वाली चीजें देते हैं। पहले तो फरसा कुदाली जो घर में खुदाई करने के लिए रखी रहती थी, दूसरे के मांगने पर बहुत विश्वस्त होता था तो देते थे। का पता हमारे घर से कुदाली और फावड़ा ले जाकर के पता नहीं क्या करेगा, कितनी हिंसा करेगा। आचार्य महाराज पहले छुल्लक जी महाराज को अपने वस्त्र स्वयं धोने के लिए आज्ञा देते थे, क्या पता कोई धोएगा तो किस तरह धोएगा और धो करके पानी को नाली में किस तरह डालेगा, पिछी लगाएगा कि नहीं लगाएगा। इस तरह अपने स्वयं का ध्यान रख के सावधानी पूर्वक उन चीजों का उपयोग करेंगे जिनका कि दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी चीजों को दे करके अपन यश और ख्याति की आकांक्षा ना करें, यह तो हिंसा का ही दान है, उसमें अपना कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला, कोई परमार्थ नहीं सिद्ध होने वाला। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, किस किस चीज को बताएं, आज वर्तमान में अपन क्या क्या चीजें दे देते हैं दूसरे के लिए और दे करके प्रसन्न होते कि हमने दी थी फलानी चीज, लेकिन वो व्यक्ति के कल्याण के लिए है या कि संसार बढ़ाने के लिए है, ये बताओ। आपस में अपन देखो, वास्तविक बात तो सुनना पड़ेगी, करते हैं सो अलग बात, लेकिन किस तरह से लेन देन करते हैं अपन घर गृहस्थी में, कैसी कैसी चीजें दूसरे को देते हैं जिससे कि उसका संसार बढ़ेगा? कभी विचार किया, कभी अपनी बेटी को दहेज में पुस्तक दी कि बेटी इससे तुम अपने जीवन के कल्याण की चार बातें जरूर सीखना, रुपया पैसा सोना चांदी तो खूब सारो दो। लेने वाले ने भी कभी सोचा कि मैं दहेज में पुस्तक लेऊंगा जिससे कि घर में भी आत्म कल्याण हो सके? इस तरह की चीज की प्रशंसा नहीं की जाएगी, प्रशंसा तो इस बात की जाएगी कि कितने रुपया दे, बताओ सगाई में कितने आए थे, ओ ब्याह में टीका कितने को भाव, तो भैया जो कचु दव है उसमें उनका यश नहीं है, वो तो सब संसार बढ़ाने वाला है। विचार तो करो, हम ऐसा प्रपंच करते रहते हैं और अपना संसार अज्ञानतावश असावधानीवश बढ़ाते रहते हैं। इनमें अपन यश मानते हैं, इस दान को वास्तविक दान नहीं कहा, ये परमार्थ भूत नहीं है, हिंसा का दान, हिंसक चीजों का दान दे करके अपन यश पाएं, ये तो निष्प्रयोजन है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि राग द्वेष के वशीभूत होकर के दूसरे के बदबंधन और पीड़ा का विचार करना, राग के वशीभूत होकर दूसरे पर अपनी दृष्टि खराब करना, जैसे दूसरे का धन पैसा देख करके अपने भीतर राग उत्पन्न होता कि फलानी चीज हमारी हो जाती, ऐसे ही दूसरे के स्त्री पुरुष को देख करके और उनको भी अपना बनाने की जो भावना है राग पूर्वक, वह भी अपने भीतर कितनी बार आ जाती है। इसी वजह से तो फिर हड़पना शुरू हुआ, किडनैप करना शुरू हुआ, नहीं अपना वश चला, ये सब राक्षस प्रवृत्ति लिखा, अपहरण करके और दूसरे के स्त्री को या कि धन संपत्ति को हड़प लेना, ये निष्प्रयोजन है। ऐसा उपदेश भी नहीं देना और स्वयं भी राग द्वेष के वशीभूत होकर के ऐसा कार्य नहीं करना। यह तो सिर्फ चिंतन कि मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, दूसरे के बारे में राग द्वेष पूर्वक उसकी हार जीत या उसके धन पैसा हड़पने की, हड़प तो नहीं पाए लेकिन मन में प्लानिंग कर ली कि जिस जितने जितना बड़ा आदमी है, एको कछु ऐसो करते कि एको पैसा हमारे पास आ जा, तो इनके पास में इस तरह की चीजें हैं, मेरे पास आ जाती, इस तरह का सिर्फ चिंतन, ये अपध्यान है। तीसरे नंबर का अनर्थ दंड कहा गया है कि ऐसा ध्यान तो अपन बैठे बैठे करते रहते हैं, दूसरे की प्रशंसा सहन नहीं होती, सो दूसरे की प्रशंसा थोड़ी सी सुन करके और फौरन उसकी निंदा शुरू कर देते कि तुम्हें मालूम नहीं है ऐसे है, तुम कह रहे प्रशंसा, मनो हम जानते हैं पहले से उनकी लक्षण, लियो उसके प्रति आपने द्वेष भाव अपना भी और दूसरे का भी उत्पन्न कर दिया। ऐसा राग द्वेष हार जीत का भाव अपने मन में निरंतर भाते रहते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति को बहुत बुराई करने की आदत थी, कई जनों हो रहे थे, नहीं तो पचत नहीं है उनको पेट में, जब तक वे दो चार जनों की कछु बातें नहीं कर ले हैं इतने उते की, ऐसा रहता है, स्वभाव रहता, बचपन से ऐसा संस्कार है, क्या करें। तो उस व्यक्ति की बहुत आदत थी, वो अपने पड़ोसी की भारी निंदा करता था, कितने भी गुण हो, कितने भी अच्छा काम करे, लेकिन उसके भीतर से अवगुण खोज लेगा और उसकी कोई ना कोई बुराई अपने मित्र से ऑफिस में जाकर के करेगा कि मेरे पड़ोसी तो ऐसा करते हैं, मेरा पड़ोसी तो ऐसा है। तो सुनते सुनते मित्र भी तंग आ गया कि अरे पड़ोसी जैसा है सो रहे, अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे उसकी निंदा करके, मेरा मित्र है इसे तो संभालना चाहिए, इसकी ये आदत ठीक नहीं है। नहीं तो अपन दो चार बार सुन के दूसरे से वही की निंदा करने लगते, लियो वो क्या कह रहा है कि मेरा मित्र है इसलिए ऐसा जो विचार वो करता है वो ठीक नहीं है, मुझे तो उसमें से ये आदत निकाल ली है। तो एक दिन सलाह देता है कि देखो तुम्हारा पड़ोसी अच्छा नहीं है, तुम बहुत उसके अवगुण देखते हो, हैं भी उसके भीतर, उसको समझाने के लिए तुम ऐसा किया करे कि जब उसका एक अवगुण देखो तो एक पत्थर अपने दरवाजे के सामने रख लिया करे, सो रोज तुम्हें गिनती भी हो जाएगी कि कितने अवगुण हैं उसके भीतर। मैंने कहा हाँ बढ़िया, मित्र तो बहुत अच्छा है, बताओ हमें ऐसा अच्छा उपाय बता रहा है। उसने करना शुरू कर दिया, अब तो और जानबूझ करके झांक झांक करके जोन दोष नहीं है, वे भी देखने लगो कि काय पत्थरा ज्यादा रखे जे, संख्या ज्यादा बढ़ जे, सो पत्थर रखते चला गया, रखते चला गया, पत्थर का ढेर लग गया। एक दिन रात में जब साइकिल से अपने घर वापस आ रहा था तो गली में अंधेरा होने की वजह से उसी पत्थर के ढेर ला करके गिरा और घायल हो गया, हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना पड़ा। जब मित्र उससे मिलने पहुंचे तो मित्र के सामने आंख नहीं उठा पाया, मित्र ने कहा कि आखिर एक्सीडेंट हुआ कैसे, तो चुपचाप रहा, कुछ नहीं कहा, बहुत पूछने पर यही कहा कि जो पत्थर तुमने दूसरे के अवगुण देख करके रखने को कहे थे उन्हीं से टकरा गया। प्रतीकात्मक है, बाहर पत्थर नहीं, भीतर छाती में धरत रहते अपन दूसरे के अवगुण देख देख के पत्थरा, और कुछ नहीं। बाहर के पत्थर से टकराएं चाहे न टकराएं, लेकिन भीतर जो दूसरे के अवगुण देख करके अपन ने पत्थर रखे हैं अपने भीतर छाती में, वो सब अपने को कहां ले जाएंगे? पतन की तरफ ले जाएंगे। ऐसा विचार करके और दूसरे के बारे में राग द्वेष के वशीभूत होकर के अपन ध्यान नहीं करना, दूसरे का बुरा नहीं विचार करना, बैठे बैठे कोई लाभ नहीं हो रहा, निष्प्रयोजन अपन करते रहते हैं। टेलीविजन के सामने बैठे हैं, फलानी टीम जीत जाए फलानी हार जाए, ने उनसे कछु मतलब ने उनसे रिश्तेदारी, बताओ। निष्प्रयोजन बैठे बैठे जी हार जाए जी जीत जाए चलता रहता निरंतर। अब तो टेलीविजन आ गया, पहले तो सब जने खम्मा से टिके टिके वो छोटो सो रेडियो ट्रांजिस्टर वो लगाए सुनत रहते कि हाँ इतने हो गए इनके इतने, फिर उछल गए एकदम चौका लग गया, सो उछल गए बिल्कुल छक्का में, तो कहो पाल वाल भी टूट करके खुदा ही उछल जाए, उतने लगो है लेकिन इनकी छाती में लग गो है कि नहीं। अपने भीतर में किस प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाता है कभी विचार किया अपन ने? एक्साइटेड हो जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि वीतराग और समता भाव धारण करता है वही व्रत नियमों को पालन कर सकता है, वरना तो व्रत नियमों को बाहर से पालन करने वाला अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकता। गपशप करने में भी अपन माहिर हैं, हां ऐसी ऐसी चीजें सुनाएंगे और सुनेंगे जिनका की कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरे ने ऐसा ऐसा काम किया, बड़े साहस का काम किया, उसी की चर्चा। चोर बड़ा माहिर है चोर करने में, अब लेव साहब उसके भीतर भीतर प्रशंसा का भाव आ रहा, दूसरे को भी सुना रहे, ये गपशप चलती रहती है। ठेला पे खड़े हुए, पान की दुकान पे खड़े हुए और सीधी दिल्ली तक की चर्चा चलेगी, जबकि हो कछु ना रहो ने कछु कर सकत। सरकारों की आपस में चर्चा चलेगी कि बायसी है बायसी है, उनको ऐसो है। इसी में दुश्रुति बुरी बातें सुनने में ही अपना इंटरेस्ट है, गपशप में। देखें अपन विचार करें कि बैठते हैं तो सिर्फ इस चर्चा के अलावा कोई और करते हैं। आचार्य भगवंत कहते कि आरंभ परिग्रह की चर्चा भी जिसे त्याग कर दिया है उसकी चर्चा की क्या आवश्यकता है, निष्प्रयोजन है। दूसरे के साहस की चर्चा, मिथ्यात्व की प्रशंसा करना, इतनी भीड़ होती है इतना ये होता है, अरे बड़ा प्रभाव है, काय का प्रभाव है, रत्नत्रय का प्रभाव है, उसके अलावा किसी का प्रभाव नहीं है। भीड़ का प्रभाव प्रभाव नहीं है, वो तो जनरंजन है। जनवाणी अलग है, जिनवाणी अलग है, लेकिन अपन उसी मिथ्यात्व की प्रशंसा करने में जुट जाते हैं जो संसार बनाने की प्रक्रिया है, और उसकी चार जगह बैठ करके और आपस में एक दूसरे को नहीं मालूम हो तो चर्चा करके उसको भी बता देते हैं। तो सुनना और सुनाना इस तरह की चीजें जो कि अपने मन को और दूसरे के मन को कलुषित करने वाली हो, संसार को बढ़ाने वाली हो, इस तरह की चर्चा न सुनना न सुनाना। और एक और अनर्थ का कार्य अपन करते हैं, अगर वो समझ जावे तो भैया पृथ्वी है किस प्रकार से उसका दोहन कर रहे, पत्थर की खदानों से पत्थर निकाल करके पूरी प्रकृति को अनबैलेंस कर रहे कि नहीं कर रहे, वृक्षों को काट करके अपने फर्नीचर बनवा रहे, उनका छेदन करवा करके और अनर्थ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? विचार करें, जल अग्नि और वायु इनका तो कोई हिसाब ही नहीं है, कितना जल वेस्ट कर रहे हैं, कितनी अग्नि, जबकि इन दोनों चीजों की कमी बार बार बताई जाती है कि भैया पानी की एक एक बूंद की सुरक्षा करो, अग्नि की भी सुरक्षा करो, बिजली की भी सुरक्षा करो। काहे के लिए? धन पैसा बचाने के लिए और अगर जीव राशि बचाने के लिए करने लगे तो धर्म ध्यान भी होवे और चीजें भी बच जावे। ये पांच स्थावर जीव हैं, इनकी भी रक्षा करने का भाव अपने भीतर होना चाहिए, अपनी असावधानी वश इनका भी घात ना हो जाए, इस तरह का विचार कौन रख सकता है जिसने अपने जीवन को अनुशासित कर लिया है, जिसने जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। वरना तो आप डंडा लेकर के बंदूक की नोक पर किसी से कुछ नहीं करवा सकते। आपके भीतर अगर वो भाव आ जाएगा तो इन छोटी सी चीजें जो दिखने वाली हैं, क्या होता पानी बगराने से, क्या होता बिजली ज्यादा जलाने से, अरे भाई इनमें भी बहुत हिंसा है। एक इंद्रिय जीव है जिनकी अपन निरंतर हिंसा करते रहते हैं, इससे भी बचने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है भैया अपने जीवन को अनुशासित इन्हीं पांच मन वचन काय के द्वारा होने वाले कार्यों को जो कि निष्प्रयोजन है अपन बच सकते हैं, लेकिन मन के भीतर वैसा भाव होना चाहिए, अंतरंग में ऐसी समझ होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें आसानी से की जा सकती हैं। वरना तो पूरा जीवन किस प्रकार गुजर जाता है, ज्यादा से ज्यादा अपन एक कागज लेकर के बैठ जाएं कि आज कितने असभ्य वचन बोले हों, कितने सभ्य वचन बोले, ये उसके अतिचार हैं इन पांचों के। असभ्य वचन नहीं बोलना, ज्यादा से ज्यादा अच्छे वचनों का उपयोग करना, इतना ही नहीं हाव भाव प्रकट करके दूसरे को राग द्वेष करवाना, कौतुकुच इस तरह का एक दोष भी आचार्य भगवंतों ने रखा, बहुत अधिक बोलना, बकवाद करना, जिसमें काम की चीज प्रयोजन भूत तो थोड़ी सी है और चर्चा इतनी सारी घंटा भर करी, वो में काम की तो दो ही बातें हती बताओ, तो वो बकवाद हो जाएगी। वचनों का प्रयोग आपने ठीक से नहीं किया, उसका दुरुपयोग कर लिया, उसमें भी अपना जीवन निष्प्रयोजन ही अपन लगा देते हैं और कह रहे कि भोग उपभोग का जो संग्रह है वो भी अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, बहुत आसक्ति नहीं रखना चाहिए, और साथ ही में बिना विचारे कोई काम आरंभ सारंभ का विस्तार नहीं चाहिए। चार जने तो भोजन करने वाले हैं और आटा 40 के लायक गीला कर लिया, अब धरो फ्रिज में कल की लाने, खराब न हो जाए, ऐसा ही तो हुआ। निष्प्रय मैंने बिना विचार की वजह से ये इस तरह के पाप कारी हुए, और अगर विचार कर लेते कि भाई चार लोग हैं मुझे तो उतना ही आटा गीला करना चाहिए जिससे कि अपना प्रयोजन सज जाए, निष्प्रयोजन क्या मतलब है। ऐसी छोटी छोटी सावधानियां अगर अपने जीवन में अपन रखते हैं तो ही अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। भाई अपन को थोड़ी सी अंतरंग में ज्ञान के माध्यम से अच्छी समझ पैदा करनी चाहिए। एक छोटी सी घटना है, बहुत सामान्य सी घटना है तो अच्छी नहीं, क्योंकि वैसा नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति को जुआ खेलने की बहुत आदत होती है, सो उस व्यक्ति के पास पैसा तो था नहीं, एक रुपया घर से लेकर के निकला, क्यों एक ही रुपया था लेकिन आदत थी। अब जे समझ में नहीं आई कि अपने पास तो है ही नहीं है, एक रुपया है फिर भी अपन जुआ खेलें, सो चला गया वो जुआ खेलने के लिए कि एक रुपया तो है एक ही लगाएं दे, सो एक रुपया भी उसने जुआ में लगा दिया और कर्म का उदय ऐसा आया कि एक रुपया के 1,00,000 रुपया जीत गए वो। अब 1,00,000 रुपया जीते सो लालच और अधिक बढ़ गई, सो 1,00,000 भी धीरे धीरे लगा दे, आखिरी में हार हूर करके वापस घर लौटे। सो घर के लोगों ने पूछी कि काय अब रुपया तो एक ही है तो क्या हुआ, केवल 1 रुपया हार गए, लाखों रुपया हारे लेकिन 1 रुपया हारे और ज्यादा नहीं। इसी तरह
अपन भी इन निष्प्रयोजन कार्यों में क्या कहते हैं, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही अहित हुआ है मेरे द्वारा, मैंने तो खूब सारा पुण्य कमाया है, धर्म ध्यान खूब सारा किया है। भैया खूब सारा धर्म ध्यान भी किया हो लेकिन आपने अगर इन पाप कार्यों में रुचि ली है तो वह सारा धर्म ध्यान व्यर्थ हो गया अपना जो अपन करते हैं सावधानी पूर्वक। लगती छोटी सी चीजें हैं लेकिन उनको भी अगर सावधानी पूर्वक नहीं करेंगे तो उनमें भी बहुत बड़ा अपराध अपन कर लेते हैं जो कि प्रयोजनभूत नहीं है, ऐसा विचार करके। और अपने आप के जीवन को इन छोटी छोटी चीजों में भी सावधानी पूर्वक अनुशासित करके जीने की समझ पैदा करनी चाहिए। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर। हे गुरुवर सा
मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान दमोता ही जाते भये अरहं आदि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की।
हम सभी लोग अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए जीवन में धर्म धारण करें ऐसा विचार कर रहे हैं। जीवन में धर्म दो तरह से अपन धारण करते हैं। वास्तव में जिसके भावों में जितनी निर्मलता है उसके जीवन में उतना धर्म है। धर्म भावों की निर्मलता का ही नाम है। अंतरंग में जितना समता भाव, जितना वीतराग भाव है, जितना निष्कषाय भाव है, वह अंतरंग चारित्र वास्तविक चारित्र है। आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा कि जितनी जितनी कषायें समाप्त होती जाएं उतना उतना सम्यक चारित्र जो श्रद्धान के साथ उत्पन्न हुआ है वह जीवन को अच्छा बनाने में कारण बनता है। एक और अपन उस अंतरंग चारित्र की प्राप्ति के लिए बाह्य में व्रत नियम अंगीकार करके अपने जीवन को मर्यादित और अनुशासित करते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भगवान की स्तुति करते हुए लिखा कि वाह्यम तपः परम दुश्चर्माश्चरंस्त। हे भगवान, आपने बहुत कठिन कठिन बाह्य तप की साधना की लेकिन क्यों? आध्यात्मिकम यमाध्यात्मिकम तपसा परिभ्रंगनाथ। अंतरंग में मेरे भावों में निर्मलता आवे, वीतरागता आवे, इसके लिए मैंने बाह्य में
तप अंगीकार किए हैं अंतरंग की निर्मलता के लिए। इच्छाओं का निरोध जितना होता जाता है उतनी तपस्या अपने अंतरंग में अपन कर पाते हैं। बाह्य तपस्या का उद्देश्य भी अंतरंग की तपस्या ही है, पर अपन बाह्य में बहुत प्रकार से धार्मिक क्रियाएं करके संतुष्ट हो जाते हैं कि मैंने तो धर्म धारण कर लिया। नहीं भैया, अपन थोड़ा आगे बढ़े। वो जो बाह्य में अपन ने व्रत नियम धारण किए हैं उनका उद्देश्य क्या है? अंतरंग की निर्मलता ही उनका उद्देश्य है, कसायों की मंदता और मिथ्यात्व का अभाव ही उनका उद्देश्य है। एक बार एक बाबा जी थे, सो वो स्नान ध्यान करके वो भगवान की पूजा के लिए जाते थे। सो नदी में वो नहाने जा रहे थे। नदी में नहाते जब जाने के लिए तैयार हुए, उसी समय वहां पर एक चांडाल झाड़ू लगा रहा था। उसका स्पर्श बाबा जी को हो गया। बाबा जी बड़े नाराज, बहुत गुस्सा, और जो कुछ भी गुस्से में कहना था उस व्यक्ति से अपशब्द कहे। अब मुझे स्नान करना पड़ेगा, फिर से नहाना पड़ेगा, बहुत सारी बातें जो भी गुस्सा में अपन कह देते हैं। आपको ज्यादा अच्छी सी आती होंगी, हमें तो भूल भाल गई कैसी कही याद। तो सब कहीं उसने सुन भी ली, वो मुस्कुराता रहा। चांडाल तो था, लेकिन इसके पहले कि बाबा जी पुनः नदी में स्नान करने जाएं, वो उनसे पहले नदी में स्नान करने जाने लगा। बाबा जी और गुस्सा में आ गए, अरे तू चांडाल होकर के नदी में स्नान करने जा रहा है? बोले महाराज मैं भी छू गया हूं। अरे छुआ तो तूने मुझे है, तुझे किसने छू लिया जो स्नान करने की आवश्यकता है? महाराज मुझे आपके क्रोध रूपी कसाई ने छू लिया। चंडाल चौकड़ी कहलाती, चार कसाएं उसे ही कहते हैं जिसके भीतर ये चारों कसाएं हैं, उसे अपने अंतरंग में इस प्रकार का भाव आना चाहिए कि भाई मुझे बाह्य में जो भी व्रत नियम संयम मैंने अंगीकार किए हैं इन कषायों के कम करने के लिए किए हैं। हम व्रत नियम संयम लेकर के और अधिक कषायवान हो जाएं तो हमने व्रत नियम संयम से क्या उपलब्ध किया, ऐसा विचार करके बाह्य में व्रत नियम संयम ग्रहण करते हैं। वाही में व्रत नियम संयम ग्रहण करने का भी अपना महत्व है। क्या महत्व है? यही महत्व है कि मेरे अंतरंग के परिणामों की निर्मलता इनसे आएगी। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो सिर्फ अंतरंग के परिणामों की निर्मलता के लिए बाहर में प्रयास नहीं करूंगा, वो तो अपने आप अंतरंग के परिणामों की निर्मलता हो जाएगी, मेरे तो अंतरंग के परिणाम निर्मल हैं, बाहर से चाहे जो करता रहूं। तो भाई ऐसा भी नहीं, बाहर से व्रत नियम भी अपने आप आ जाएंगे जिसके परिणाम निर्मल हैं। और जिसने बाहर से व्रत नियम पालन किए हैं उसका उद्देश्य भी अंतरंग की निर्मलता है। बाहर के आचरण तो है, देखो जब अपन किसी ग्लास में खूब बढ़िया से केसर डला हुआ दूध पीने के लिए तत्पर हो और अगर कोई गिलास के ऊपर गंदगी लगा दे फेंक दियो,
क्यों नहीं पीते? वो तो बाहर से लगा है, भीतर तो केसर डला हुआ अच्छा बढ़िया दूध है। नहीं भाई, बाहर चूंकि अशुद्धि हो गई इसलिए अब वो अंतरंग में कितना भी बढ़िया आपने दूध भरा हो वो पीने योग नहीं रहा। हमारे बाह्य आचरण में भी इसी तरह से निर्मलता होनी चाहिए जिससे कि हमारे अंतरंग के परिणाम भी निर्मल हो सके। महत्व दोनों का है, लेकिन किसी एक को प्राप्त करके अपन दूसरे का निषेध कर देते हैं सो अधूरे रह जाते हैं। मंदिर जाने वाला ये सोच करके अहंकार करे कि देखो हम तो इतना मंदिर जाते हैं, और दुकान पर बैठ करके चार चार पैसा पांच पैसा के लाने और गरीब से गरीब आदमी का भी शोषण करे तो का सार भाव भैया आपके मंदिर जावे को? अधूरा रह गया। और इसी तरह कोई व्यक्ति मानव सेवा के तो बहुत काम करे लेकिन भगवान के दर्शन ना करे और कहे कि भैया हम तो मानव की सेवा करना ही धर्म मानते हैं, वही हमारे भगवान हैं, तो भैया वो भी अधूरा है। अरे जिसने दया और अहिंसा धर्म बताया, जिसको अंगीकार करके आप मानव सेवा कर रहे हैं संसार में, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने क्या उसके चरणों में प्रणाम करने एक बार न जाएंगे? अवश्य जाएंगे। सो जो व्यक्ति ये मान करके अपने बाह्य में आचरण को अच्छा कर रहा है लेकिन श्रद्धा उसके भीतर सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति नहीं है तो वो भी अधूरा है। और जिसकी अकेली सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा रखे हो, क्रियाएं अकेली दोहरा लेता है, अंतरंग में उसके सब जीवों के प्रति दया भाव नहीं आए हैं, तो भैया वो भी अधूरा है। दोनों को अभी आधा आधा काम और करना बाकी है, ऐसा विचार करके और जो काम जिसको है वो करें, अंगीकार करें। जिसके अंतरंग में निर्मलता लाने के लिए वो उत्सुक है वो बाह्य में भी आचरण को पालन करे, और जो बाह्य में आचरण पालन करता है वो ध्यान रखे कि मेरे बाह्य आचरण के पालन करने का उद्देश्य तो मेरे अंतरंग की निर्मलता है। अगर इस तरह दोनों प्रकार से बाहर और भीतर अपन जीवन को अनुशासित और मर्यादित करें तो ऐसा नहीं है भैया कि अपना जीवन अच्छा ना बने। जीवन तो अच्छा है ही, जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो जीवन को अच्छा बनाने का नहीं है, वास्तव में वो जीवन में जितनी विकृतियां आ गई हैं उनको दूर करने का है। आत्मा का स्वभाव तो निर्मल है, मेरे राग द्वेष जो विकारी भाव हैं उनके द्वारा उसमें मलिनता आई है, सो मैं उस मलिनता को दूर करूं तो मैं अपने वितराग स्वभाव को तो प्राप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं है, अंतरंग में ही है, सो उसे प्राप्त कर लूंगा। इसके लिए आचार्य भगवंतों ने एक श्रावक को पांच अणुव्रतों के पालन की चर्चा भी करी कि बाहर में पांच अणुव्रत, अगर अंतरंग में राग द्वेष की निवृत्ति करना चाहते, राग द्वेष से बचना चाहते तो हिंसा झूठ चोरी कुशीलो परिग्रह से बचो, और इतना ही नहीं करना तो पड़ेगा, संसार में गृहस्थ में रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो हो गई, तो क्या करें फिर? तीन गुण व्रत भी धारण कर लो जिससे कि तुम्हें जो अणुव्रत ग्रहण किए हैं उनमें और वृद्धि हो जाए। अपनी सीमा के बाहर जो बांधी है नहीं जाएंगे, जो भी पांच पाप हैं अपनी मर्यादा के बाहर उन सब का त्याग, सो मर्यादा के बाहर समस्त सूक्ष्म और स्थूल पाप का त्याग होने से तुम्हारे जो व्रत ग्रहण किए हैं उनमें इजाफा हो गया, वो वृद्धि को प्राप्त। इतना ही नहीं, जो निष्प्रयोजन पाप हैं उनको तो छोड़ो, जो अपन बैठे बैठे बिना काम के बिना कोई प्रयोजन के
कर लेते हैं अपनी अज्ञानता और असावधानी बस, सो ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक पूरी सावधानी से अपने कार्य करो तो निष्प्रयोजन जो पाप है, अनर्थ दंड है, वह सबसे भी बच जाओगे। और आज तीसरे नंबर पर कह रहे कि अक्षार्थानाम परिसंख्यानम भोगोपभोग परिमाणम, फिर उसके बाद का क्या था, हाँ, अर्थवता मप्यबधौ राग रति नाम तनुकृति। क्या करें, भोग उपभोग की सामग्री का उपयोग तो करना पड़ता, पांच इंद्रिय और मन के विषय तो खूब रखे हुए हैं गृहस्थ ने अपने पास, लेकिन क्या करेंगे, उनके प्रति भी अपने राग भाव को कम करने के लिए उन्हें भी रोज रोज सीमित कर लेंगे। एक बार जो भोजन इत्यादि है खा करके समाप्त हो जाता है उसे भोग कहते हैं, और कपड़ा इत्यादि हैं जिनको फिर से धो करके अपन धारण कर लेते हैं, पहन लेते हैं, वे सब उपभोग की वस्तुएं हैं। ऐसे भोग और उपभोग की वस्तुओं की सीमा कर ली कि आज तो मैं चार ही कपड़े बार बार बदलूंगा नहीं, चार बार ही बदलूंगा, आज तो 10 चीजें माँ थाली में मुझे परोसेगी, मैं तो 8 में ही अपना काम कर लूंगा, 2 नहीं खाऊंगा। अरे बड़े आराम से भोगो भोग का परिमाण करके अपन जो वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति है, राग भाव है, उसको घटा सकते। पहले नंबर तो ऐसी भोगो भोग की चीजें जो कि अभक्ष्य हैं, खाने योग्य नहीं है, हम पहले उनसे बचें। एक त्यागी व्यक्ति पहले तो उन सब का ही त्याग करता है और फिर बाद में जो भक्ष्य पदार्थ हैं उनकी सीमा करता। कई लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, सो होटल की चीज तो खाएंगे लेकिन हमारा शक्कर का त्याग है, हमारा नमक का त्याग है, ये भैया जो तो उल्टो हिसाब होगा। पहले अभक्ष्य चीजें छोड़ने थी के भक्ष्य, अपन ऐसा उल्टा क्रम कर लेते हैं कि अभक्ष्य पदार्थ अभी ग्रहण करने में आ रहे हैं और भक्ष्य को छोड़ने के लिए अपन उपाय करने लगते हैं। पहले अपन को उपाय अभक्ष्य पदार्थों का करना चाहिए। 5 प्रकार के अभक्ष्य पदार्थ आचार्य भगवंतों ने लिखे हैं, जिसमें बहुत तरस जीवों का घात होता है, जैसे कि शहद है, मांस, अंडा, मछली है, ये सब बहुत त्रस जीवों के 2 इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री जीवों के घात के कारण बनते हैं, सो हम इनका सेवन नहीं करेंगे। त्रस घात जो मेरे लिए प्रमाद वर्धक चीजें हैं उनको भी नहीं मैं ग्रहण करूंगा। बहुत प्रकार की प्रमाद वर्धक चीजें आजकल चल पड़ी, ड्रग भी चल पड़ी है, जिनके की सेवन से और व्यक्ति वैसे ही अपन मोह के नशा में है। ठीक ठीक बात समझ में नहीं आऊ तो बनखो संसार की, लेकिन उसके ऊपर से और ऐसी चीजें जिनसे की और अधिक प्रमाद आ जाए, गाफिलता आ जाए, उनसे बचने के लिए भी आचार्य भगवंत कह रहे। ऐसी भी चीजें हैं अनंत काय, जिसमें एक इंद्री अनंत जीवों का घात होता है, जैसे कि जमीकंद, लेकिन अपन इन चीजों को त्याग नहीं कर पाते हैं। पहले तो इन अभक्ष्य चीजों का त्याग करना चाहिए। और अनुपसेव्य, ऐसी वस्तुएं जो कि सज्जन पुरुषों के खाने योग्य नहीं है, वो सब अनुपसेव्य कहलाती हैं, जैसे कि लार है, मूत्र इत्यादि है, जिससे कि आजकल चिकित्सा करने लगे, लेकिन वो अभक्ष्य में शामिल है। ध्यान रखें, सज्जन पुरुष उसको स्पर्श भी नहीं करेंगे। बताओ, आप स्पर्श करेंगे दूसरे का थूक, खाने की बात तो छोड़ो। ऐसे अनुपसेव पदार्थों को छोड़ें और जो अनिष्टकारी पदार्थ हैं उनका भी त्याग करें, जैसे कि विष इत्यादि हैं, कौन खाता है। ऐसी भी चीजें हैं जो आपस में पेट में जाकर के अलग अलग इकट्ठी होकर के विषाक्त हो जाएंगी, ऐसी चीजों का भी सेवन ना करें। यदनिष्टम तदव्रत्ये, जो अनिष्टकारी हैं मेरे लिए मैं उनके लिए त्याग करूं। अभी तो मुझे ज्वर है इसलिए मैं रोटी का त्याग करता हूं, हलवा पुड़ी का त्याग करता हूं। हलवा पुड़ी है तो भक्ष्य लेकिन मेरे लिए अभी तो अनिष्टकारी है, मेरे रोग को बढ़ाने वाली है, सो उसे मैं ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा विचार करता है पहले व्रती व्यक्ति जो बाहर में व्रतों को अपने जीवन को अनुशासित बनाने के लिए ग्रहण करता है, और फिर जो भक्ष्य पदार्थ हैं, खाने योग्य पदार्थ हैं, उनमें भी सीमा कर लेता है कि इतना ही ग्रहण करेंगे और अधिक मात्रा में नहीं करेंगे। अगर अपन सीधा सा उदाहरण है कि भैया 10 ठो चीजों के लाने, 10 ठो कटोरी चाने, थाली चाने, गिलास चाने, लोटा चाने, अब इतने अच्छा लगता है कि हाँ बढ़िया पूरी थाली में इतनी कटोरियां रखी, इतने आइटम हैं, और फिर बैठे कर भी तो जी आइटम वाला मामला जो है ना, कितना आरंभ करना पड़ता है हर आइटम के बनाने में। आपने तो झट से खा लिया लेकिन उसमें कितना दोष है, कितनी हिंसा करनी पड़ी होगी, बनाने वाले को कितना आरंभ करना पड़ा होगा, ये ध्यान नहीं दिया। और इतना ही नहीं, आप आगे भी करवाओगे, 10 कटोरियां आपने जूठी करी भी 10 मजेंगी, उसमें दोष आएगा कि नहीं आएगा। कम से कम मैं आरंभ करके और अपना जीवन यापन करूं, ऐसी दृष्टि जिसकी है, 2 में काम चलता तो 3रे की क्या जरूरत, और अगर 3 में काम चलता तो 4थे की क्या जरूरत, मैं तो कहता हूं 30 में काम चलता तो 31 में की क्या जरूरत। ऐसा अगर जिसका सोच है कि मेरे लिए जो आवश्यक है उतना ही बस, बाकी सब चीजें हैं संसार में बहुत सारी, मेरे पास स्वयं भी है, मैंने इकट्ठी करके रखी, लेकिन कोई बात नहीं, इतने से ही काम चल रहा है, पड़ी रहने तो कौन उनके प्रति राग भाव उत्पन्न करे, क्योंकि जितना मैं चीजों का उपयोग करूंगा उतना उनके प्रति राग भाव या कि द्वेष भाव मेरे अंदर उत्पन्न होगा, मैं उनके प्रति उदासीन भाव रखूं, ऐसा मैं अब विचार करूं अगर, तो वास्तव में अंतरंग में भी मैं तपस्या कर रहा हूं और बाहर से अपनी इच्छाओं का निरोध करके भोगो भोग की सीमा करके मैं तपस्या कर रहा हूं। भैया 5 इंद्री और मन के विषयों को सीमित कर लेना, बहुत हैं अपने पास लेकिन उन सब के प्रति अपने राग द्वेष परिणाम को कम करने का उपाय तो यही है कि भाई उनकी सीमा कर लेंगे। सीमा के भीतर जो रखे हुए हैं उनके प्रति भी बहुत आसक्त नहीं होंगे, नहीं तो भैया तुम गलती समझ लो, 10 चीजें की जगह आपने 4 रख ली और 4 ही ऐसी जम के आसक्त होकर के सेवन कर रहे हो कि जैसी 10 के संग ने करती तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा हो जाता कई बार कि अब तो कचूनी हमने एक ही अनाज ले रहे हैं, सो वो एक ही अनाज की इतनी चीजें बनाएंगे आइटम, लपसी बना लो, वही के पापड़ बना लो, हैं? बहुत प्रकार की चीजें बनती हैं, एक ही अनाज लिया है लेकिन 17 चीजें बनेंगी, आसक्ति तो घटी नहीं ना चीजें घटी। कहने को जरूर आपने एक अनाज रखा है लेकिन आइटम तो कितने सारे बना लिए, उसी एक अनाज से जितने बन सकते थे उतने बना लिए, आपने आसक्ति तो अपनी उस एक के प्रति भी उतनी ही अधिक रखी जितनी कि आप 25 के प्रति रखते थे। ऐसा भी विचार अपने जीवन में आना चाहिए, भैया वास्तव में तो राग द्वेष